डैनियल की पुस्तक संख्या 89 मिथ्या सिद्धांतों का अनावरण एडवेंटिज्म में द डेली का ऐतिहासिक अध्ययन। डैनियल की पुस्तक पर लेखों की इस श्रृंखला के 81वें लेख में हमने मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 20 17-22 से एक उद्धरण सम्मिलित किया था, जहां बहन व्हाइट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि द डेली को मसीह के पवित्र स्थान का प्रतिनिधित्व मानने वाली शिक्षा एल्डर्स प्रेस्कॉट और डैनियल्स को स्वर्ग से निकाले गए स्वर्गदूतों द्वारा दी गई थी। उन्होंने वास्तव में द डेली के बारे में उनके गलत विचार की पहचान वैसे नहीं की है जैसा मैंने किया है, परंतु ऐतिहासिक अभिलेख अत्यंत स्पष्ट है कि वे इसी को सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। वे यूराया स्मिथ की पुस्तक डैनियल एंड द रेवलेशन के उन भागों को फिर से लिखना चाहते थे जो द डेली की समझ का समर्थन करते हैं, जिसे वो अर्ली राइटिंग्स पृष्ठ 74 में सही दृष्टिकोण के रूप में पहचानती है। W.W. प्रेस्कॉट ने द प्रोटेस्टेंट शीर्षक से एक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसमें एकमात्र विषय द डेली के गलत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। वे और जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष A.G. डैनियल्स एडवेंटिज्म में उस झूठी शिक्षा को सर्वमान्य मत के रूप में स्थापित करने के प्रेस्कॉट के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए शैतानी अगुआ बन गए, परंतु एलन व्हाइट के जीवित रहते उनके शैतानी प्रयासों की सफलता पर अंकुश रहा। 1931 में डैनियल्स ने बताया कि जिस वर्ष मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस का वो अंश लिखा गया था 1910, उसी वर्ष उन्होंने डैनियल्स ने द डेली विषय पर सिस्टर व्हाइट से भेंट की थी और उन्होंने उन्हें ये विश्वास दिलाया था कि उनका और प्रेस्कॉट का दृष्टिकोण सही है।
इस इतिहास को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अब 1929 में आई ज्ञान वृद्धि पर विचार आरंभ कर रहे हैं, जब पवित्र सुधार रेखाएं और डैनियल अध्याय 11 के अंतिम 6 पद उद्घाटित हुए थे। डैनियल अध्याय 11 के पद 40 की पूर्ति में सोवियत संघ के पतन के साथ जो प्रकाश प्रकट हुआ उसे पहचानने के लिए ये आवश्यक है कि नित्य तथा नित्य द्वारा दर्शाई गई भविष्यद्वाणी का इतिहास ठीक से समझा जाए, क्योंकि वही इतिहास डैनियल अध्याय 11 के पद 40 से 45 में उस इतिहास की पुनरावृत्ति को स्पष्ट करता है। ये पद दिखाते हैं कि उनमें उद्घाटित संदेश पूर्व और उत्तर के समाचार हैं, जो परमेश्वर की प्रजा के अंतिम उत्पीड़न का कारण बनते हैं।
परंतु पूरब और उत्तर की ओर से समाचार उसे व्याकुल करेंगे, इसलिए वो बहुत बड़े क्रोध के साथ बहुतों का नाश करने और उन्हें सर्वथा मिटा डालने के लिए निकल पड़ेगा, और वो समुद्रों के बीच उस शोभायुक्त पवित्र पर्वत में अपने राजमहल के तंबू गाड़ेगा, तो भी उसका अंत आ पहुँचेगा और उसकी सहायता करने वाला कोई ना होगा। डैनियल 1:11-45।
1989 में सोवियत संघ के पतन पर जिसकी मुहर खुली थी, 40वें पद का वो संदेश अंतिम वर्षा का संदेश है जो पोपतंत्र उत्तर का राजा को बड़े प्रकोप के साथ आगे बढ़कर नाश करने और बहुतों को पूरी तरह मिटा देने के लिए प्रेरित करेगा। टाइडिंग्स भविष्यवाणी की भाषा में एक संदेश है।
और वे कैसे प्रचार करेंगे यदि वे भेजे न जाएं?
जैसा लिखा है, जो शांति का सुसमाचार सुनाते हैं और अच्छी बातों की शुभ सूचना लाते हैं, उनके पांव क्या ही सुंदर हैं। रोमियो 10:15।
अंतिम वर्षा का संदेश वो संदेश है जो परमेश्वर के अंतिम दिनों के प्रहरी प्रस्तुत करते हैं, जो दाह की बारी का गीत और मूसा तथा मेमने का गीत गाते हैं।
पर्वतों पर उसके पांव क्या ही मनोहर है, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति का प्रचार करता है, जो भलाई का शुभ समाचार लाता है, जो उद्धार का प्रचार करता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है, तेरे पहरेदार अपना स्वर ऊंचा करेंगे, वे एक साथ स्वर मिलाकर गाएंगे, क्योंकि जब यहोवा सियोन को लौटाएगा तब वे आंख से आंख मिलाकर देखेंगे। यशाया 52:7-8।
डैनियल 11 के पद 44 के समाचार पाप के मनुष्य को क्रोधित कर देते हैं और अंतिम पापसी रक्तपात संपन्न हो जाता है। वो संदेश तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय जोरदार पुकार तक बढ़ जाता है।
जब तक उन्होंने प्रकाश प्राप्त न किया हो और चौथी आज्ञा की बाध्यता न देखी हो, तब तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाता। परंतु जब नकली सप्त को लागू कराने वाला फरमान जारी होगा और तीसरे स्वर्गदूत की जोरदार पुकार मनुष्यों को पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना के विरुद्ध चेतावनी देगी, तब झूठ और सत्य के बीच की रेखा स्पष्ट रूप से खींच दी जाएगी। तब जो लोग अभी भी उल्लंघन करते रहेंगे, वे पशु की छाप प्राप्त करेंगे। साइंस ऑफ द टाइम्स 8 नवंबर 1899।
पूर्व और उत्तर की खबरें जो पापसी को क्रोधित करती है, रविवार के कानून पर एक ऊंची पुकार तक उभरकर प्रबल हो जाती हैं, और वही संदेश देर की वर्षा का संदेश है जो 11 सितंबर 2001 को शुरू हुआ। ऊंची आवाज का वाक्यांश एक भविष्यवाणी संबंधी पद है जो बढ़ती हुई शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
इस समय का सत्य अर्थात तीसरे स्वर्गदूत का संदेश को ऊंचे स्वर में अर्थात बढ़ती हुई शक्ति के साथ प्रचारित किया जाना है। जैसे जैसे हम महान अंतिम परीक्षा के निकट आते हैं, 1888 की सामग्री 1710।
44वीं आयत के समाचार वो अंतिम वर्षा का संदेश है जो अनुग्रह काल के समाप्त होने से ठीक पहले, जब मिखाएल खड़ा होता है, दिया जाता है। ये वही अंतिम वर्षा का संदेश है जो 11 सितंबर 2001 को आया था, परंतु जब 144,000 पर मुहर लगा दी जाती है और तब पवित्र आत्मा बिना माप के उंडेला जाता है, तो ये एक प्रबल पुकार, एक ऊंची आवाज में बदल जाता है। ये वही अंतिम वर्षा का संदेश है जिसने 144,000 की मुहरबंदी की अवधि को चिन्हित किया।
ये अंतिम वर्षा का संदेश है जिसे शांति और सुरक्षा के संदेश के रूप में गधे के आगमन से लेकर सिंह के आगमन तक लाओदीकियाई एडवेंटिज्म द्वारा नकली तौर पर प्रस्तुत किया गया है। 11 सितंबर 2001 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक का काल लाओदीकियाई एडवेंटिज्म की आध्यात्मिक मृत्युशैया को दर्शाता है, और परमेश्वर के घर यरूशलेम का न्याय हो जाने के बाद जिनका न्याय होता है वे उसी कब्र में मरते हैं। लाओदीकियाई एडवेंटिज्म की मृत्युशैया गधे और सिंह के बीच है, और जो संदेश अस्वीकार किया जाता है तथा जो उनकी मृत्यु का कारण बनता है वो पूर्व इस्लाम का प्रतीक और उत्तर पापसी का प्रतीक से आने वाले समाचार है। ये वही संदेश है जो तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है।
दानियल 11 के अंतिम 6 पद, जिनकी मुहर अंत के समय 1991 में खोली गई, अंतिम वर्षा का संदेश है जिसे ऐसे समय में घोषित किया जा रहा है जब शांति और सुरक्षा की झूठी अंतिम वर्षा का संदेश प्रचारित हो रहा है। अंतिम वर्षा की परीक्षा पहले परमेश्वर के घराने पर आती है, क्योंकि न्याय वही से आरंभ होता है, और फिर वो परमेश्वर के घराने के बाहर के अन्य झुंड का सामना करती है। इसी कारण तीसरी पीढ़ी में लाओदीकियाई एडवेंटवाद में जो झूठ प्रविष्ट कराया गया था उसे समझना आवश्यक है, क्योंकि जब परमेश्वर जिन पर वो अपनी मुहर लगा रहा है उन पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलता है, उसी समय वो उन पर भी प्रबल भ्रम उंडेलता है जो सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं करते।
20वीं शताब्दी के पहले 1.5 दशक में द डेली को लेकर हुए विवाद के दौरान सही मिलरवादी मत की द डेली पैगनवाद का प्रतीक है का बचाव करने वालों में से एक F.C. गिलबर्ट थे। गिलबर्ट यहूदी धर्म से परिवर्तित थे और धारा प्रवाह हिब्रू पढ़ते और बोलते थे। उन्होंने हिब्रू भाषा की अपनी समझ के आधार पर दानियल की पुस्तक में अग्रणियों के मत का समर्थन किया। 1910 में, उसी वर्ष जब सिस्टर व्हाइट ने वो पांडुलिपि लिखी जो कई दशकों तक दबा रहने वाली थी और जिसमें ये बताया गया था कि द डेली के बारे में डैनियल्स और प्रेस्कॉट का दृष्टिकोण शैतान के स्वर्गदूतों से आया था, गिलबर्ट ने द डेली के मुद्दे पर सिस्टर व्हाइट से व्यक्तिगत भेंट की।
हमें पता है कि उसका साक्षात्कार हुआ था, क्योंकि उसने तुरंत अगले दिन सिस्टर व्हाइट के साथ हुए साक्षात्कार का सारांश लिख दिया। 1931 में A.G. डैनियल्स ने ये दावा किया कि उसी वर्ष 1910 में दैनिक विषय पर उनका सिस्टर व्हाइट से साक्षात्कार हुआ था। डैनियल्स का दावा था कि सिस्टर व्हाइट ने उसे किसी और निष्कर्ष की गुंजाइश नहीं छोड़ी सिवाय इसके कि दैनिक मसीह की पवित्र स्थान सेवा का प्रतीक है। लेकिन डैनियल्स का ये साक्षात्कार वाला दावा केवल एक झूठ ही नहीं था, ये भविष्यवाणी का वो झूठ है जो प्रबल भ्रम उत्पन्न करता है।
जिनके पास 1845 और 1850 के चार्ट उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि जब 1843 का चार्ट 1842 में प्रकाशित हुआ था, तब मिलेराइट्स अब भी ये मानते थे कि 2300 वर्षों की भविष्यवाणी की पूर्ति में शुद्ध किया जाने वाला पवित्र स्थान पृथ्वी ही था। जब उन्होंने 1850 का चार्ट प्रकाशित किया, तब उन्हें पता चल गया था कि शुद्ध किया जाने वाला पवित्र स्थान स्वर्गीय पवित्र स्थान था।
इसी कारण 1843 के चार्ट में परमेश्वर के पवित्र स्थान का कोई चित्रण नहीं है, लेकिन 1850 के चार्ट में परमेश्वर के पवित्र स्थान का चित्रण है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि डैनियल्स ने दावा किया कि सिस्टर व्हाइट के साथ अपने साक्षात्कार में उन्होंने उन्हें 1843 का चार्ट दिखाया और चार्ट पर पवित्र स्थान की ओर संकेत किया। ये असंभव था क्योंकि 1843 के चार्ट पर कोई पवित्र स्थान है ही नहीं। साक्षात्कार का उनका दावा एक झूठ था।
जब मैं 2009 में इस इतिहास का अध्ययन कर रहा था और मुझे ये पता चला कि इस मुद्दे के दोनों पक्षों के पुरुषों ने ये दावा किया था कि द डेली विषय पर उनका बहन व्हाइट के साथ साक्षात्कार हुआ था, तो मैंने एलन व्हाइट एस्टेट को ईमेल किया और पूछा कि क्या उनके पास वो लॉगबुक उपलब्ध है जिसमें 1910 में बहन व्हाइट के साक्षात्कार दर्ज किए गए थे। उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास वो लॉगबुक अब भी है। निम्नलिखित मेरा ईमेल और एलन व्हाइट एस्टेट का उत्तर है।
सोमवार 19 जनवरी 2009। जिन्हें ये संबंधित हो, मैंने सुना है कि एक लॉगबुक है जिसमें ये दर्ज है कि सिस्टर व्हाइट से किसने मुलाकातें की और वे मुलाकातें किन विषयों से संबंधित थीं। मेरा उद्देश्य ये सत्यापित या खंडित करना है कि क्या एजी डैनियल्स ने 1910 में डेली विषय पर सिस्टर व्हाइट से मुलाकात की थी। मुझे जिनात है कि इस मुलाकात के होने के बारे में ऐतिहासिक गवाही उपलब्ध है, पर यह जानना है कि क्या किसी आधिकारिक लॉगबुक में इसका वास्तव में उल्लेख है। इसी के साथ मुझे बताया गया है कि एफ सी गिलबर्ट ने भी 1910 में डेली विषय पर सिस्टर व्हाइट से मुलाकात की थी, और ये जानना है कि क्या उस अवधि में उनके स्टाफ द्वारा रखी गई किसी लॉगबुक से इसकी पुष्टि हो सकती है। संभव है कि कोई लॉगबुक न रही हो, या यदि रही हो तो आप वो जानकारी जारी न करते हो, या ये भी संभव है कि उसके मौजूद होने पर भी उसे मेरे लिए जांचना आपकी क्षमता से परे हो। इसलिए किसी भी स्थिति में मैंने पूछना उचित समझा। आप जो भी सहायता प्रदान कर सके उसके लिए बहुत आभार होगा।
प्रिय जेफ, आपकी ईमेल के लिए धन्यवाद।
हमारे पास एलन व्हाइट के यात्रा कार्यक्रम का काफी हद तक पूरा विवरण है जो उनके पत्रों, डायरियों और प्रकाशित कार्यक्रमों पर आधारित है, लेकिन लॉगबुक जैसी कोई चीज नहीं है।
निस्संदेह आपने ईजीडब्ल्यू बायोग्राफी द लेटर एल्महेवन ईयर्स के खंड 6 पृष्ठ 356-357 में एजी डैनियल्स की एलन व्हाइट से भेंट के बारे में पढ़ा होगा।
हमें इस मुलाकात का कोई स्वतंत्र अभिलेख नहीं मिला है। हमारे पास 1 जून 1910 का एल्डर गिलबर्ट का एक पत्र है जिसमें 6-9 जून को सेंट हेलेना, जहां एलन व्हाइट रहती थी, में रहने की उनकी योजना का उल्लेख है। मेरी जानकारी में समर्थन के लिए उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य बस इतना ही है।
ईश्वर आशीर्वाद दे। टिम पोयर, उपनिदेशक, एलन जी व्हाइट एस्टेट।
डैनियल्स का द डेली विषय पर कभी साक्षात्कार हुआ हो, इसका कोई स्वतंत्र अभिलेख नहीं है, लेकिन गिलबर्ट का एक पत्र है जो ये बताता है कि वो 6 से 9 जून 1910 तक उसके घर पर रहने का इरादा रखता था।
एलन व्हाइट एस्टेट, जिस सिस्टर व्हाइट की जीवनी का हवाला देता है, उसमें उनके पोते ने डैनियल्स के साक्षात्कार के मुद्दे पर चर्चा करते हुए 1910 के मनगढ़ंत साक्षात्कार के संबंध में डैनियल्स का दावा दर्ज किया।
चर्चाओं में कुछ देर बाद एक अवसर पर एल्डर डैनियल्स डब्ल्यू सी व्हाइट और सी सी क्रिसलर के साथ एलन व्हाइट के अर्ली राइटिंग्स वाले कथन का अर्थ ठीक ठीक क्या है ये स्वयं उनसे जानने की उत्सुकता में उनके पास गए और विषय उनके समक्ष रखा। डैनियल्स अपने साथ अर्ली राइटिंग्स और 1843 का चार्ट लेकर गए। वो एलन व्हाइट के पास ही बैठ गए और उनसे लगातार प्रश्न पूछते रहे। इस भेंट का उनका प्रतिवेदन डब्ल्यू सी व्हाइट द्वारा पुष्टि किया गया। मैंने सबसे पहले सिस्टर व्हाइट को अर्ली राइटिंग्स में ऊपर दिया गया वक्तव्य पढ़कर सुनाया। फिर मैंने उनके सामने हमारा भविष्यवाणी संबंधी चार्ट रखा, जिसका उपयोग हमारे पादरी दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों की व्याख्या करते समय करते हैं। मैंने उनका ध्यान पवित्र स्थान के चित्र और 2300 वर्ष की अवधि की ओर, जैसा कि वे चार्ट पर प्रदर्शित थे, दिलाया। तब मैंने पूछा कि क्या वो याद कर सकती थी कि इस विषय के बारे में उसे क्या दिखाया गया था। जैसा कि मुझे उनका उत्तर याद है, उन्होंने ये बताने से शुरुआत की कि 1844 के आंदोलन में रहे कुछ नेताओं ने 2300 वर्षीय अवधि के समापन के लिए नई तिथियां खोजने का प्रयास किया,
ये प्रयास प्रभु के आगमन के लिए नई तिथियां निर्धारित करने का था। इससे एडवेंट आंदोलन में रहे लोगों के बीच भ्रम उत्पन्न हो रहा था। इस भ्रम में उसने कहा कि प्रभु ने उसे ये प्रकट किया कि तिथियों के संबंध में जो दृष्टिकोण रखा गया और प्रस्तुत किया गया था वो सही था, और फिर कभी कोई समय निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, न ही समय के संबंध में कोई अन्य संदेश दिया जाना चाहिए। तब मैंने उससे ये बताने को कहा कि दैनिक के बाकी पहलुओं, राजकुमार, सेना, दैनिक का हटाया जाना और पवित्र स्थान का गिराया जाना के बारे में उसे क्या प्रकट किया गया था। उसने उत्तर दिया कि ये पहलू उसे दर्शन में उसी तरह नहीं दिखाए गए थे जैसे समय संबंधी भाग दिखाया गया था। वो उस भविष्यवाणी के उन बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए प्रेरित नहीं होंगी। उस साक्षात्कार ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी। 2300 वर्षीय अवधि के विषय में वो बिना हिचकिचाहट खुलकर स्पष्ट रूप से और विस्तार से बोली, लेकिन भविष्यवाणी के दूसरे भाग के बारे में वो मौन रही। समय के विषय में उसके खुले स्पष्टीकरण और डेली को हटाए जाने तथा पवित्र स्थान को गिरा दिए जाने के विषय में उसके मौन से मैं जो एकमात्र निष्कर्ष निकाल सका वो ये था कि उसे दिया गया दर्शन समय के संबंध में था और भविष्यवाणी के अन्य भागों के विषय में उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। DF DOHB AGD वक्तव्य 25 सितंबर 1931, आर्थर वाइट, LNG White, खंड 6257।
डेनियल्स ने दावा किया कि उसने उन्हें 1843 का चार्ट दिखाया और उस पवित्र स्थान के बारे में पूछा जो उस चार्ट पर प्रदर्शित नहीं है। उसका ये भी दावा था कि उसने अर्ली राइटिंग्स नामक पुस्तक ली और उनसे ये पूछते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि जब उन्होंने द डेली के बारे में अग्रदूतों की समझ का स्पष्ट रूप से समर्थन किया और ये कहा कि वो चार्ट प्रभु के हाथ द्वारा निर्देशित था, तो उनका आशय क्या था। एलन वाइट का पुत्र, जो उस जीवनीकार आर्थर एल वाइट का पिता था जिसने इस कथित घटना का संक्षिप्त विवरण लिखा, ने द डेली के बारे में डेनियल्स और प्रेस्कॉट की शैतानी धारणा को स्वीकार कर लिया था और साक्षात्कार में उसने जो सुना था उसके संबंध में डेनियल्स के दावे की पुष्टि की। वे अपनी गढ़ी हुई कहानी के साथ बस सावधान नहीं थे, क्योंकि 1843 का चार्ट किसी ऐसे पवित्र स्थान को दर्शाता ही नहीं है जिसकी ओर डेनियल्स इशारा कर सकते थे। साक्षात्कार में प्रस्तुत एक और झूठ ये है कि अर्ली राइटिंग्स से लिया गया वो अंश समय निर्धारण के विरुद्ध एक चेतावनी था। जिस अंश के बारे में कथित तौर पर डेनियल्स ने पूछा था वो इस प्रकार है।
मैंने देखा है कि 1845 का चार्ट प्रभु के हाथ से निर्देशित था और उसे बदला नहीं जाना चाहिए, कि उसके अंक वैसे ही थे जैसे वो उन्हें चाहता था, कि उसका हाथ उस पर था और उसने कुछ अंकों में हुई एक गलती को छिपा दिया था ताकि जब तक उसका हाथ हटाया न गया कोई उसे देख न सके। फिर मैंने दैनिक दानियल 8:12 के संबंध में देखा कि बलिदान शब्द मनुष्य की बुद्धि द्वारा जोड़ा गया था और मूल पाठ का अंग नहीं है, और ये कि प्रभु ने उसके विषय में सही दृष्टि उन लोगों को दी जिन्होंने न्याय घड़ी की पुकार उठाई। जब 1844 से पहले एकता विद्यमान थी तब लगभग सब दैनिक के सही विचार पर एकमत थे, पर 1844 के बाद की उलझन में अन्य विचार अपनाए गए हैं और अंधकार और भ्रम उसके पीछे पीछे आए हैं। 1844 के बाद से समय किसी परीक्षा का विषय नहीं रहा और वो फिर कभी परीक्षा नहीं होगा। अर्ली राइटिंग्स 74-75।
विली सी वाइट, सिस्टर वाइट के पुत्र, ने द डेली के बारे में गलत दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया था और उनके पुत्र आर्थर ने उस साक्षात्कार से जुड़ी झूठ को, जो कभी हुआ ही नहीं था, ये सुझाव देने का प्रयास करके कायम रखने की कोशिश की कि अर्ली राइटिंग्स के उस अनुच्छेद में दी गई चेतावनी केवल और केवल समय निर्धारण के विरुद्ध चेतावनी थी। वो तर्क 1930 के दशक में गढ़ा गया था और झूठ का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। हम उस तर्क पर अगले लेख में चर्चा करेंगे।
23 सितंबर, प्रभु ने मुझे दिखाया कि उन्होंने अपने लोगों के बचे हुए जनों को पुनः प्राप्त करने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया है और कि इस एकत्रीकरण के समय में प्रयासों को दोगुना करना आवश्यक है। विखराव के समय इज़राइल मारा और चीरा गया, पर अब एकत्रीकरण के समय परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करेगा और बांधेगा। विखराव में सत्य फैलाने के लिए किए गए प्रयासों का बहुत कम प्रभाव पड़ा, वे बहुत कम ही सफल हुए या कुछ भी नहीं, पर एकत्रीकरण में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है तब सत्य को फैलाने के प्रयास अपना अभिप्रेत प्रभाव उत्पन्न करेंगे। सबको इस कार्य में एकजुट और उत्साही होना चाहिए। मैंने देखा कि अब जब हम एकत्र हो रहे हैं तो हमारे मार्गदर्शन के लिए उदाहरण के रूप में बिखराव का हवाला देना किसी के लिए भी लज्जास्पद है, क्योंकि यदि परमेश्वर अब हमारे लिए तब से बढ़कर कुछ न करे तो इज़राइल कभी एकत्र नहीं होगा। जैसे सत्य का प्रचार करना आवश्यक है, वैसे ही उसे एक पत्र में प्रकाशित करना भी आवश्यक है।
प्रभु ने मुझे दिखाया कि 1843 का चार्ट उसके हाथ से निर्देशित था और उसका कोई भी भाग बदला नहीं जाना चाहिए। संख्याएं वैसी ही थीं जैसी वो चाहता था। उसका हाथ उस पर था और उसने कुछ संख्याओं में एक गलती को छिपा रखा था, ताकि जब तक उसका हाथ हटाया नहीं गया, कोई उसे देख न सके।
तब मैंने डेली के संबंध में देखा कि सैक्रिफाइस शब्द मनुष्य की बुद्धि से जोड़ा गया था और मूल पाठ का हिस्सा नहीं है, और ये कि प्रभु ने उसकी सही समझ उन लोगों को दी जिन्होंने न्याय के समय की पुकार दी। जब 1844 से पहले एकता विद्यमान थी तो लगभग सभी डेली की सही समझ पर एकमत थे, परंतु 1844 के बाद भ्रम के बीच अन्य विचारों को स्वीकार कर लिया गया है और परिणाम स्वरूप अंधकार और भ्रम छा गया है। रिव्यू एंड हेराल्ड, 1 नवंबर 1850।